ਰੁੱਤ ਸੰਭਾਲੋ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਮਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਰੋ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਆਇਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈ ਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈ ਏ ਮਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਧੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਧੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵਸ ਗਈ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਧੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵਸ ਗਈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਸੂਰਤ ਯਾਰ ਦਿਸਾਈ ਏ ਮਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਆਈ ਏ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਇਆ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈ ਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਰੋਕਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਜੇ ਰੋਕਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕਦੀ ਨਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਕਾਈਏ ਮਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਆਈਏ ਆਸਵੰਦ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆਸ਼ਾਵੰਤ ਜੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਸਵੰਤ ਜੋ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਲੀ ਜਾਨ ਟੰਗਾਈਏ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖਬਰ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਖਿੜ ਜਾਵਣ ਕਰਦੇ ਉਹ ਖਬਰ ਸਭ ਫੁੱਲਾਂ ਤਾਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖਿੜ ਜਾਵਣ ਵੇਖਣ ਚਾਓ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੇਖਣ ਚਾਓ ਦਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੀ ਬੁੱਲ ਬੁੱਲ ਆਈਏ ਮਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਆਈਏ ਰੁੱਤ ਆਈ ਤੇ ਸਾਜਨ ਆਇਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆਈਏ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਰਦਾ ਧਿਆਨ ਕੁੰਡਲਦਾਰ ਜ਼ੁਲਫ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤਰਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਬਬ ਜੋ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬੇਕਰਾਰ ਦਿਲ ਆਈਏ ਮਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਮਸਤੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੋ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਹੁਣ ਆਈਏ ਰੁੱਤ ਆਈ ते सतगुर आया रुत आई ते मुर्शद आया रुत बसंत हुने आई ए मेरे दिल नु धीरज आई ए संग प्रेम की राख लगा ले तुझे वहाँ जोगन बन कर जाना है तन प्रेम की राख लगा ले तुझे वहाँ जोगन बन कर जाना है या उनको रगों की तारों पर या उनको रगों की तारों पर उल्फत का राग सुनाना है जा उनको रगों की तारों पर उल्फत का राग सुनाना है ऐ आंखों की गंगा जमुना ऐ आंखों की गंगा जमुना स्वामी के पांव धुलाना है ऐ आंखों की गंगा जमुना स्वामी के पांव धुलाना है मन ले चले अपने दागों का मोहन पर फूल चढ़ाना है तन प्रेम की राख लगा ले तुझे वहाँ जोगन बन कर जाना है जा उनको रगों की तारों पर उल्फत का राग सुनाना है उठ जाग प्रेमी देख जरा एक मस्ताना साकी आया है उठ जाग मुसाफिर जाग जरा मस्ताना साकी आया है उसने ही सारी दुनिया को उसने ही सारी दुनिया को एक ज्योत का दर्श पढ़ाया है इसने ही सारी दुनिया को एक ज्योत का दर्श दिखाया है कोई शीश ना बिल्कुल लेता है कोई शीश ना बिल्कुल लेता है दुनिया को ज्योति देता है कोई शीश ना बिल्कुल लेता है दुनिया को ज्योति देता है ये प्रेम तबीयत साकी है ये प्रेम तबीयत साकी है जिस आकर दिल गरमाया है उठ जाग प्रेमी देख जरा मस्ताना साकी आया है वो ये घर में घर दिखलाता है ये घर में घर दिखलाता है एक ज्योत की ज्योत जगाता है ये घर में घर दिखलाता है एक ज्योत की ज्योत जगाता है जो इससे आंख मिलाता है जो इससे आंख मिलाता है उसने ही सब कुछ पाया है कुछ देख प्रेमी जाग जरा मस्ताना साकी आया है जब नाम कुमारी आती है जब नाम कुमारी आती है दुनिया मदहोश हो जाती है सब मस्ती में सरचार हुए सब मस्ती में सरचार हुए। वो नशा पुराना लाया है सब मस्ती में सरचार हुए। ये नशा पुराना लाया है इंसान सभी अब जागेंगे। इंसान सभी अब जागेंगे शैतान कहीं अब भागेंगे। इंसान सभी अब जागेंगे शैतान कहीं अब भागेंगे। उस चूतर और ब्राह्मण को उस चूतर और ब्राह्मण को इकट्ठा कर बिठलाया है। उस देख प्रेमी देख जरा उसने जिस देश में प्रीति होती है वो देश तरक्की करता है। जो नफरत रोग लगाया है वो मौत को ब्याह कर लाया है। उस देख प्रेमी जाग जरा एक मस्ताना साथी आया है।
इंसान नाम है आत्मा देहधारी का। आत्मा में वही तफात मौजूद है जो परमात्मा में। सबसे बड़ी सिर्फ जो परमात्मा में है वो प्रेम। गॉड इज लव। क्योंकि आत्मा कौ कवि राम की है इसमें भी वही सिर्फ मौजूद है प्रेम। ये भी प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का खासा है कहीं न कहीं लग कर रहे। ये इस वक्त जिस्म के ही के बनाने में लग रही है या इसके ताल्लुकात के बनाने में, यही इसका दीन ईमान बना पड़ा। पर ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमेशा रहने वाली नहीं, मिनट जाने वाली। इसलिए इसके साथ लगने से इसको वो सुख नसीब नहीं हो सकता जो इसको पाना, जो ये पाना चाहता। थोड़ी देर के लिए सुख प्रतीत हो करता है पर उतनी देर के लिए जितनी देर ये सुख इसके साथ जुड़ी रहती है, जब सुख उन चीजों से हटती है या वो चीजें इससे हट जाती हैं तो उपड़ती है, ये दुखी महसूस करता। महापुरुष हमेशा यही तालीम देते रहे कि तुम्हारा खासा है लग कर कहीं न कहीं रहना। इसलिए ऐसी चीज से लाव लगाओ जो अविनाशी हो, जो अविनाशी, जो नाश से रहे। तो अगर उसके साथ हमारी सुत लग जाए नाव मरे न हो तो न वो मरेगा न इसको सुख दुख होगा। वो अविनाशी पुरुष से ताल्लुक कहां पर आ सकता है सवाल। अरे वो घट घट बासी है, सब खंडों ब्रह्मों को आधार दे रहा है, हमारी आत्मा की आत्मा है, उसी के आधार पर हमारी आत्मा इस जिस्म के साथ कायम है। जब वो इसे हटा ली जाती है ताकत जिस्म की प्रलय हो जाती है, वही ताकत सब खंडों ब्रह्मंडों को आधार दे रही है, जब वहां से वो सत्या हटा ली जाती है वहां इसकी परला और महापरलय हो जाती है। तो महापुरुष ये कहते हैं कि आपने सुख को उस परमात्मा से लगाओ, अब उसके साथ अवल तो अविनाशी पुरुष से ताल्लुक कैसे आए, दूसरे उसके साथ लगने का जरिया क्या है। तो सब महापुरुष ने फरमाया कि परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, और उस अविनाशी पुरुष को पाने का जरिया भी प्रेम ही है। दसम गुरु साहब ने फरमाया, साच कहूं सुन लियो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। ऐ भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूं, ये दसम गुरु साहब फरमा रहे हैं, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। प्रेम कहां से मिल सकता सवाल, प्रेम कुदरती खासा है, इन एक तौर पर जातियत में हर एक आत्म यंत्र मौजूद है, ये किसी ग्रोपिंग में लग रही है हमारी आत्मा, तो इसे कायदा है लगना। टेम्परेरी तौर पर कई जगह लगता है, वो हमेशा जगह नहीं रहती, वो फिर नहीं इसका तो रुख उठता, फिर और तलाश करता है, किसी ऐसी जगह लग जाओ जहां से फिर उखड़ना नसीब न हो। और दूसरी बात, आत्मा चेतन स्वरूप है, परमात्मा महाचेतनता का समुद्र, चेतन चीज को अगर सुख हो सकता है तो किसी चेतन चीज से ही मिलकर हो सकेगा, जड़ पदार्थों से नहीं। तो अगर हमें दुनिया में जड़ पदार्थों से लगकर भी हमें सुख प्रतीत होता है तो वो सुख उन चीजों में नहीं, वो हमारी अपना ही सुख या आनंद है, उसमें हम मनकूस पाते हैं। समझे, जैसे एक कुत्ता हो हड्डी को खा रहा हो, तो हड्डी में तो कोई रस नहीं, उसका अपना खून बहता है, उसको पी पी कर मस्त होता। समझे, वो समझता हड्डी में रस है, यही हाल तुम्हारी, परमात्मा निजानंद है, आनंदमय है, प्रेम का स्वरूप है, ये भी आनंदमय है, प्रेम का स्वरूप, इसे लगकर रहना है, ये नित इसमें शामिल है जाती है। तो इसको ऐसी जगह महापुरुष के लगाओ जो अविनाशी चीज, और इसको ऐसी चीज से लगाओ, चेतन को चेतन ही सामानों से लगाओगे तभी ये सुख प्रतीत करेगा, नहीं तो जड़ पदार्थों में थोड़ी देर के लिए छिन भिंगा सुख आएगा फिर खुल जाएगा। तो अब मैंने आज सुबह भी अर्ज किया था कि हमारी सुख उस महान सुख की अंश है, ये फैल रही, अगर ये एकत्र हो जाए, इसके अंदर प्रेम की ज्वाला पर जलत हो। आजकल तो नहीं, पुराने जमानों में बैलून हुआ करते थे हाइड्रोजन गैस के हवा में उड़ने के लिए, तो उसके रस्से से जमीन के साथ बांध दिया जाता था, जब उड़ाना मंजूर होता था बैलून को तो रस्सी खोल दी जाती थी, देखते आप बैलून आसमानों पर उड़ते। आत्मा चेतन स्वरूप है, ये आसमानी चीज है, जमीन के साथ जिस्म जिस्मानियत के साथ इंद्रियों की रस्सियों से बंधी पड़ी, अगर ये इंद्रियों से इसको हटाओगे फैलाओ की सूरत हटेगी, देश का रूह आसमानों की चीज आसमानों को जाएगी, मिट्टी के ढेले को अगर आसमान पर फेंको तो फिर वो जमीन पर ही आता, क्योंकि तो इंद्र वो अर्थ है मिट्टी, अगर ज्योति है इसको जगा लो उसके शोला में से ऊपर जाएगा, उल्टा करोगे तो भी ऊपर ही जाएगा। तो आत्मा का है रूहानी, ये चेतन स्वरूप है, महाचेतन प्रभु से जुड़ना चाहती है। ये इंद्रों के बंधनों से आजाद अगर हट जाए, इस ये प्रेम का स्वरूप है और प्रबल होता। तो भक्ति भाव कहो, इसके अंदर कुदरती जज्बा है जो हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। अगर हम उसको फैलाव से हटाकर अंतर में कसर कर रहे हैं, या ऐसे पुरुषों की सोबत में बैठे हैं जिन्होंने उसको एकत्र किया है, तो उसमें भी जो लफ्ज उसके हृदय से निकलेंगे वो भी नशा लेकर ही आते हैं। हाफिज साहब ने फरमाया, खुम 2000 बादा नरसद बा यक जुरे, तो 2000 शराब के मटकों का नशा हे मुर्शद तेरे एक घूंट की बराबरी नहीं करते, इतना नशा है उसमें। वे कुजा शराब खाकी, वे कुजा शराब जाना, ये जमीनी शराब का क्या मुकाबला है उस रूह की शराब के साथ। तो रूह में एक निजानंद है, सत्य का आनंद करके इसको बयान किया। सिर्फ रूह के फैले होने के सबब से हम बिल्कुल नादार मालूम होते, तो इसके एकत्र करने ही में सब कुछ है। क्यों सवेर साहब ने एक जगह फरमाया कि अगर ये खा के मन अगर गंदम बराया, ये खा के मन अगर गंदम बराया कि मैं मर जाऊं, इस जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस मिट्टी से जो गंदम उगे, अगर गन्ना पदी मस्ती सदा, अगर उससे रोटी पकाओगे तो मस्ती बढ़ाने वाली होगी। क्यों? इसलिए तो दीवाना साधिंदा पजिंदा, जो पकाने वाला वो भी मस्त हो जाए और परोसने वाला भी मस्त हो जाए, खाने वाले का भी करने की। आखिर भाई इसमें कुछ है तो नूरश बैठ के मस्ताना सराय, उस तनूर से बे अख्तियार मस्ती के चल निकले, राग निकलने लग जाए। आखिर भाई जिन्होंने ये ध्यान किया है, कुछ अनुभव उनके अंदर है ही ना। स्वामी राम के उसको कहा गया कि अरे भाई जो कुछ चिंता थे ये पागल पानी न हो, तो कह रहे हैं भाई हाँ, उस आदमी का फैसला ज्यादा मुश्त नहीं है जिनको दोनों पागलपनों से वाकफियत हो। दुनिया के पागलपन से तो हम वाकफ है ही, इस तरफ का भी थोड़ा तजुर्बा हो जाए फिर देखो क्या है। तो आत्मा निजानंद है, हमारा स्वरूप है, हम वही परमानंद के घाट पर गिरे पड़े हैं, फैलाव में जा रहे हैं, बाहर से हटना आता नहीं। कभी एक घंटा दो घंटे एकांत में बैठकर अपने आप की तरफ तवज्जो नहीं गई, फैलाव से सुख अती नहीं, इस हकीकत की झलक हमको मिली है। बात है परमात्मा का, वो हमारी आत्मा की आत्मा क्या, वो हमारी आत्मा नहीं है। ये क्या ग्रंथ पोथियों में उसका जिक्र है, आसमानों पर न वो बसता है, न तटो तीर्थों में, न धर्म स्थानों में। अरे भाई वो तुम्हारी जातीयत में शामिल। अब जब तक हम अपनी जात की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तब तक उस हकीकत का पाना मुश्किल। इसे सब महापुरुषों ने कहा कि अपने आप को जानो, चेतन रूप विचारो अपना। स्वामी जी महाराज ने फरमाया तुम चेतन स्वरूप हो, इसको विचारो, इसको एनालाइज करो, इसको ये चेतन स्वरूप जो है इंद्रियों के घाट पर जिसम का रूप बने बैठी है, अपने आप को बिल्कुल भूल ही चुकी। एक फकीर ने कहा कि हे प्रभु, ये मिट्टी के प्याले थे, इनमें शराब थी शराब, ये इतने मलिया मेट हो गए कि अब इस मिट्टी से बू भी नहीं आती, इसमें कभी शराब थी। तो जिन्होंने अपनी फैलाव से सुख को हटाकर अंतर्मुख एकत्र हुए हैं, या जिस भी जिस्मानी से ऊपर आकर इंद्रियों का घाट छोड़ा है, उस झलक को पाया है वो इसी के गुना बाद जाते हैं। अगर सुर महान सुर परिपूर्ण परमात्मा से लग जाए फिर नशे से नशा बढ़ना और क्या। गुरु नानक साहब से बाबर बादशाह से मिले, वो भांग पी रहा था तो बादशाह ने, बाबर बादशाह ने उनको भांग पेश की। उन कहने लगे देख बाबर, ये नशा जो तू पीता है सुबह को पीता है शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह को उतर जाता है, मेरे पास वो नशा है जो कभी उतरने वाला नहीं। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे बिना इस नशे। महापुरुषों ने इसका जगह जगह जिक्र किया। शुभ और भरे प्रेम रस रंग उपजाय चाव सात जैसम, जो साधु होता है वो प्रेम रस और नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनकी सोबत करने से वो नशा मिलता है। उनके सुख का मिटो चिंताव है तुम्हारी सुख को चिंताव का खमीर मिलता है। शायद ही वो दौलत को पा जाते हो जो बड़ी मुश्किलों से इंसान के हाथ आ सके। वह हर एक इंसान के लिए मस्ती मिल कैसे सकती है, इसमें यह कुदरती जज्बा है। भक्ति भाव का कहो प्रेम का कहो, ये लगना चाहती है किसी ऐसी चीज से मतलब कि मिस डायरेक्टली लगी पड़ी है गलत तरीके से। चेतन स्वरूप थी, चेतन से ही लगकर इसको हमेशा के सुख मिल सकता था, उसके साथ न लगने से ये दुखी हो रहे। स्वामी जी महाराज ने इसका निर्णय फरमाया, स्वरूप तू दुखी रहे हम जाने, ऐसे तो हम देख रहे हैं कि तू दुखी है हम जान रहे। कहते कब से जान दिन ते तय शब्द बिसारा मन संयारी छन, जिस दिन से आए सुख तूने शब्द परिपूर्ण परमात्मा जो खंडो ब्रह्मणों के लिए खड़ी ताकत है उससे अपना कॉन्टेक्ट हटा लिया और मन के साथ लग गए, उस दिन तू थी सतनाम की गोती। तू सतनाम की गोत वाली थी, सतनाम सतपुरुष की अंश थी ना, मगर मन चूड़े के साथ लग गए। मन को इंद्रिय खेच रहे, इंद्रियों के भोग रस तो इस फैलाव में जाने के कारण इंद्रिय, क्योंकि आपको पता हर एक इंद्रिय से गलाजत ही जाती है, आंख से गिर जाती है, कान से मैल जाती, नाक से छींक जाता है, मुंह से लालच जाती है और चमड़े से जिस्म से पसीना जाता है। ये सब गलाज नहीं है ना, जो दिन रात हम इसी में लंपट रहे हैं तो मन का खासा गलाजत में फिरना चूड़े ही का काम है। तो इन लोगों के घाट के ऊपर आना कहो, जब तक तुम अंतर्मुख नहीं होते, जट से चेतना लैदा नहीं करते, जिसम जिसमानी से ऊपर नहीं आते, इंद्रियों का घाट छोड़ते नहीं, किसी तरह ध्यान कर लो, अपने आप को एनालाइज करके बॉडी कौन से अबव राइज नहीं करते, इसके अंतर हकीकत है वो खुलती है। तो इसके अंतर एक कुदरती जज्बा मौजूद है भक्ति भाव का, वो क्या है, ये ग्रोप कर रही है हमारे से, ग्रोपिंग जारी है दिन रात लगातार हर एक इंसान के। क्रिएशन शुरू से ले लो, वनस्पति है चारों खानी है, उसमें भी इलाज होती है, ऐसा बूटा हाथ लगा तो सुकड़ जाता, वो सुख को पाना चाहता बायोटेक का, कीड़ों को लगाओ तीरा वो सुकड़ जाता, इंदों को लगाओ हर एक सुखी होना चाहता, हैवानों को लगाओ इंसानों को लगाओ। तो ये जो है हमेशा के सुख पाने का ख्याल इन इच्छा जाती के तौर पर, ये इंसान को तलाश में लगी रहती है, कहां कहां ये सुख लगती है, हर एक जगह इसका तर्क तजुर्बा होने के सबब से ये दुखी है। तो संत महात्माओं ने देखा भाई ये चेतन स्वरूप है, इसको सुख अगर हो सकता है तो महाचेतन प्रभु के साथ लगने ही से हो सकता है। ये सोचता है उस महान स्वरूप के साथ लगने से ये सुखी हो सकती है। गुरु नानक साहब ने फरमाया फुर्ती सुख रलाइए एक तन कर तुल्हा लगे देख, छोटी सुत को बड़ी सुत के साथ लगा। अगर लया लो क्योंकि इस तन का तुला है, इसके अंतर रह कर अगर सुत अपने को महान सुर से लगा लोगे तो भाव सागर से पार हो जाओ। हमें दुनिया में लाने वाली चीज कौन सी है? इंद्रों के भोग रस बाहर ही फैलाओ, जहां आशा तहां बासा। अब भी हम उस हकीकत को पा सकते हैं अगर इसका राइट डायरेक्शन करना। तो ये जो कुदरती जज्बा हर एक इंसान के अंदर, हर एक जीवजन के अंदर मौजूद है, हमेशा की सुख पाने को ग्रोपिंग जारी है, यही इंसान को मुख्तलिफ तजुर्बों से सियानी करती। बच्चा है छोटा, उसे दूध मिल जाए माता का तो चुप है, बाकी रोता है कई सामान को। लड़के को बाल बच्चों खेलने में सुख है, बड़े आदमी को पढ़ने लिखने विचारने में सुख है, बस ये सब इनमें भी आलम भी बन जाओ, फाजिल बन जाओ, ग्रंथाकार बन जाओ, बड़े खिलाड़ी बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, सब कुछ बनने पर भी क्या तुम सुखी हो? नहीं, अभी ग्रोपिंग जारी। तो आत्मा को अगर सुख हो सकता है तो केवल महाचेतन प्रभु के साथ लग कर ही हो सकता है। अब ये धक्के खाता खाता इंसान इस पर जो चीज ऊंची जब प्रबल होती है सुख के पाने की, उसके अंदर एक किस्म की तड़प पैदा होती है। भक्ति भाव का कहो जज्बा हर एक इंसान के अंदर इन्हें तौर पर है, जातीयत में शामिल है। तो इसको कैसे उभारा जाए सवाल यह। जलती ज्वाला से अगर आप एक जलती आग ले लो तो हमारा काम बन जाता है कि नहीं? जिसमें ये ज्वाला पड़ जाता है उनकी शोभत में बैठोगे तुम भी उसे गर्मी पा जाओ। लोहा है अगर वो लाल में रंग हो, लाल रंग हो गया आग में रहकर, बिल्कुल आग का स्वरूप बन गया है, वो भी तुमको जलाएगा। तो ऐसी आत्मा जो महाप्रभु के साथ लगकर उसका स्वरूप बन गई, बेहतर उनकी शोभत करने ही में तुमको एक रंग मिल जाता। मैं क्या इस वक्त दो चार करिए शब्द भी आपके सामने रखे जाएंगे इसी बात को बतलाने के लिए कि ये सुख कैसे डेवलप कर सकती है, उस प्रभु के पाने में।
राग मल्हार महला पहला, हर कन्या हर पहला एक ओंकार सत्य चक्री नैन नींद ना चाहे, बिन पेर नींद ना पाई, सूर चरे प्रियु देखे नैनी, नेव नेव लागे पाई।
श्री गुरु नानक साहब पहली पातशाही के ये शब्द है, मिसाल देकर समझाते हैं कि जैसे चक्री और चकवा, उसका क्या खासा कि रात के समय वो दरिया से आर पार हो जाते। चक्री एक तरफ रहती है, चकवा दूसरी तरफ रहता है, वो उड़कर उधर जाती है, उड़कर उधर जाता, उनका मिलाप नहीं होता, अंधेरा है, جب تک دن میں چڑھے سورج کی کرن الایا ہوتی ہے تو ان کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس سے شانتی آتی. تو ایسے ہی جیسے چکی اور چکوے کے درمیان دلی کشش ملنے کی ہے، ایسی ہماری آتما کے اندر ہے تو انہیں کی ذاتیت میں شامل ہے. اگر یہ انہیں کے گھاٹ سے تھوڑا پھیلاؤ اس کا ہٹے تو بے اختیار اس کے اندر جذبہ اس مالک کے پانے کا، کس کے ساتھ؟ ایک انسین پاور جس کو خواہ یہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، یہ کشش محسوس کرتا ہے، ڈرائیونگ پاور. تو اس میں کیا ہے کہ سکھ جب باہر سے ہٹ کر انترمکھ ہو تو وہاں بے اختیار کیا بنتا ہے؟ پرماتما الہار میں آئی طاقت جو ہے، گاڈ انٹیگریشن پاور، اس کو نام کہتے ہیں. تو گاڈ انٹیگریشن پاور میں دو فیزز ہے، ایک لائٹ دوسری ساؤنڈ. پرماتما جیوتی سوروپ ہے، جب سوت باہر سے ہٹتی ہے انتر پرکاش ہونے لگتا ہے، سوری کی کرن کی طرح روئے انتر میں پھوٹ اٹھتی ہے، آتما کو ہوش آنے لگتی ہے. جیسے چکری کو اور اس وقت راحت ہوتی ہے جب سوری کی کرن نکلتی ہے تو راحت آتی ہے، کیونکہ اس وقت اس کے ملاپ کا وقت ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری سوت جب باہر سے ہٹ کر جنوں کا گھاٹ چھوڑ کر اوپر آتی ہے، اس کے اندر وہ پریا جس سے سوت ہمیشہ ملنا چاہتی ہے، جس کو مل کر یہ سدا کے سہاگ کو پا سکتی ہے، وہ اس کے ادایا ہونے سے، پرگٹ ہو جانے سے جیوتی کے وکاس کی صورت میں اس کو راحت آ جاتی، ٹھنڈک ملتی. تو کہتے ہیں جیسے چکوی نیند رات بھر نہیں سوتی، ایسے ہی جس آتما کے اندر اتنی تڑپ بے اختیار ہو جائے کہ وہ اس کے بغیر نہ رہ سکے، اس کو نیند بھی نہ آئے، دن چڑھنے پر اس کو خالی راحت ہو سکتی ہے. کیا جو رات بھر اس فراق میں، اس سوز میں، اس بڑا تڑپ میں اس کو چین نہیں ملتا ہے، ایسی روح باہر سے ہٹے گی. یہ قاعدے کی بات ہے، جس کے اندر کسی کی تڑپ ہونا ملنے کی سب چیزیں بھول جاتی ہے، خود پیراؤ سے ہٹتی ہے. اور انترمکھ جب ہو جائے تو انترمکھ ہونے پر ہی پرکاش ہے، کی سیٹ دی ڈورز آف دی ٹیمپل آف دی باڈی، یو سی دی لائٹ آف ہیون. اگر تم اس جسم کے دروازوں کو بند کر لو، تمہارے اندر اس پرماتما کی بادشاہت کی روشنی جاگ اٹھے. دس اندرے جو راکے باس کام کے آتما ہوئے پرگاس، اگر تم دس اندروں کو بس میں کر لو، پانچ کرم اندرے اور پانچ گیان اندرے، تو تمہارے اندر پرکاش ہو جائے گی. یہ جو پرکاش بھی ہے یہ بھی مینس ٹو دی اینڈ ہے، کہاں پہنچائے گا؟ دس از وے بیک ٹو گاڈ، جہاں سے اس کا آؤٹ کم ہے وہ شبد اور انعام ایبسلیوٹ گاڈ. تو آتما کو وہ چونکہ چیتن کی راو ہے، ہماری آتما چیتن ہے، اس کو پا کر یہ سنتشت ہو سکتی ہے. پہلے یاد میں ہنی ہے، اس کے گناواد گانے ہیں، انتر میں برا اور سوز کا جاگنا ہے. یہ جب تک نہیں پیدا ہوتی تب تک سمجھو وہ پربھو ابھی آنے والا نہیں. یہ پیش ہے ماں، جیسے پھلدار درختوں میں پہلے شگوفے پڑتے ہیں، جس پھلدار درخت میں شگوفہ پڑ جائے وہاں پھل کی امید ہوتی ہے. ایسی جس آتما کے اندر تڑپ برا اور سو جاگ اٹھتی ہے، سمجھو اس پربھو کے آنے کا پیش ہے ماں. جیسے اگر بارش آنی ہو تو پہلے بادل آ جائیں تو تب بارش کی امید ہوتی ہے، ایسے ہی جس ہردے میں اس کے پانی کی تڑپ سو جاگ اٹھے، سمجھو پربھو آنے والا. یہ برا اور سوچ کا جاگنا جب تک نہیں ہوتا تب تک شانتی ہے. پہلے دکھ ہے اس میں شک نہیں، نہ نیند نہ چینا، نہ آپ آئے نہ بھیجے پتیاں، پھر چین کیسے ہو؟ یا چٹھی پتری آ جائے، نہ وہ آئے نہ کوئی چٹھی پتر آئے جس کے ملنے کا تڑپ ہو، پھر نیند کہاں اور کھانا کہاں؟ مولانا روم صاحب نے کہا کہ اے بیٹا، پربھو کے پانے کی جس کے اندر تڑپ آ گئی اس کی نو نشانی ہے، آنکھ کی نمی، آنسو بہتے، ٹھنڈی آہیں، لب خشک، چہرہ خشک، نہ نیند نہ کھانے کی سوئی، اور نالا بت مرا رو نہیں۔ جس نے بھی پربھو کو پایا، کبھی سا فرماتے ہیں جن پایا تن روئے، ہنسی خوشی جے پیو ملے تک کون دوہا بنے۔ کسی مہاپرش کی جیون لو، اس میں یہی ایک مرحلہ ہے، ایک قدم ہے جس سے گزرنا اٹھانا پڑتا۔ گرو نانک صاحب تھے، ان کے اندر بڑی زبردست بیرا ہوئی تو بیرا میں آدمی ایکانتی ہو جاتا، کسی کو منہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ کہتے ہیں میں جنگلوں باہر کنارے ہو جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے۔ ایکانتی میں اور یہ چھوئی پربل ہوتی ہے، اپنے آپ کی طرف اور زیادہ توجہ دینے کا موقع ملتا۔ تو گھر والے نے وید کو بلایا، انہوں نے اس واقعے کو اپنی بانی میں بیان کیا ہے۔ وید بلایا، وید کی پکڑ دنہلے بائیں، بولا وید نہ جانے کر کرے جما۔ وید کو بلایا گیا، وہ بےچارا نبضے تو کھولتا کہ بھولے وید کو معلوم نہیں کہ یہ نبضوں کی بیماری نہیں، یہ تو کریجے میں کرک لگی پڑی۔ تو کیا کہتے ہیں، جا ویدا گھر اپنے، اے وید جا، یہ تیری بیماری نہیں، یہ تو ہم تو اپنے شو سے رت رہے ہیں، اس لگن میں ہیں، تم کچھ اور سوچتے ہو۔ تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ہر ایک انسان کے اندر جب تک اس کی یاد میں چھوٹی طاقت ہمیشہ جزو چیز ہمیشہ کل سے ملنا چاہتی ہے، یہ قدرتی جذبہ، اسی کو بھکتی بھاؤ کہتے، تو جزوی گر روزے چند اندیشہ ہے کل کنی کل باشی، اگر یہ سارے بندوں سے آزاد ہو تو دیکھتے ہیں اس کے اندر پریم پھوٹ اٹھتا ہے، ہائی پریم کا شروع، اور پریم اس کے پانے کا ذریعہ۔ باہر جتنے ہم اپرا ودیا کے سادھن کرتے ہیں، گرنتھ پوتھی پڑھتے ہیں، شوق بنتا ہے پڑھنے سے، اور جن پوجا پاٹھ یہ وہ کرتے ہیں، اسے بھکتی بھاؤ کے اپجانے کے لیے ہے، یہ زمین کی تیاری ہے، پیش خیمہ ہے، اس سے پراپتی نہیں پراپتی ایک قدم اور اٹھانا ہے۔ وہ جب تک آپ کی سوچ باہری ہندو کے پھیلاؤ سے ہٹ کر انترمکھ نہیں ہوتی، تب تک اس حقیقت سے تم واصل نہیں ہو سکتے۔ مہاپرشوں کی مانی اس میں ہوا دینے والی ہے، کیونکہ وہ چائے ہندو سے نکلی، یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے ہٹو۔ تو کہتے ہیں جس دل میں اتنی تڑپ ہے، سوز ہے، گداز ہے، برا ہے، دن چڑھنے پر اس کا ملاپ ہو سکتا ہے۔ جب تک دن نہ چڑھے انسان منش جیون ہی، ہمیں ایک ایسا جیون ملا ہے جس میں ہم رہ کر اس کو پا سکتے ہیں۔ تو انتر میں تڑپ کا آنا، برہا برہا کیے، برہا تو سلطان، جت تن برا نو پجائے تو تن جان مہان، اے برا تو بادشاہ ہے، جس گھٹ میں تو پرگٹ نہیں ہوتی، کہتے وہ مسان کے برابر۔ پریم کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج کی چیز وگو بندہ جانا بودن، دل بدست بگڑے دادن ہو حیران بودن۔ دل کسی کے حوالے کر دینا اور آپ حیران کرنا اس کا نام ہے پریم. دل کے تخت پر جو بیٹھ گیا بس جہاں دل گیا وہاں سب کچھ گیا. تو اسی لیے کہا ایک دل تھا وہ لے گئے شام, اب کون بجے جگدیش مارو من نہ بہے دسلی. ایک من ہے جس طرح چاہے لگا لو, کھائے گر کی بھکت کر تو کھائے بچے کماؤ. انہوں کے بھوگوں رسوں میں رہو یا اس کو اٹھا کر گرو جس رستے چلاتا اس پر چلو. گرو انوہی پرش ہے, وہ کہتا ہے بھائی تو ہندوؤں کا گھاٹ چھوڑ, میں بھی جسم نہیں تو بھی جسم نہیں, اوپر آ جا. اور انتر وے اپ کرتا, اوپر آنے کا فرسٹ اینڈ کانٹیکٹ دیتا ہے, جیسے میں نے آج صبح عرض کیا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی صحبت اور سنگت ایک رنگ لاتی. تو گرو نانک صاحب بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ چکوئی وہ نہ نیند ہے نہ چین ہے جب تک دل نہ چڑھے, جب تک سورج کی کن چڑتی اس کو ہوش آتی, اس کے اوپر چکوئے کے ملنے کا وقت بنتا. اسی طرح آتما کو بھی جب تک بے قراری بے صبری جیسے اس کو ہوتی ہے, اس کے اندر نہ بنے, وہ دل کا سورج نہیں چڑھتا ہے, حقیقت کھلتی نہیں, شانتی ہو نہیں سکتی. اب اپنے ہردو میں نظر مار کر دیکھیے کہ ہم کہاں بیٹھتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم کچھ پوجا پاٹھ بھی کرتے ہو سکتا ہے ہم کچھ گرنتھ پوتھیوں کا سہجہ بھی کرتے ہوں, گانا بجانا بھی کرتے ہوں, اس سے کچھ فائدہ ملتا. اگر یہ کچھ کرنے سے ہمارے اندر اس پربھو کے پانے کی زبردست تیور اچھا اور بیڑا اور سوچ نہیں جاتی, تو سب سال عبادت کنت نمازی نیس کسے تو عشق ندار خدا راضی نیس. سو سال عبادتیں کرتے رہو تم سب کے معنی میں نمازی پجاری نہیں بن سکو گے. اگر یہ کچھ کرتی ہو تمہارے اندر پریم برا اور سوز کی صورت اختیار نہیں ہوتی, تم پرماتما کے راز کو نہیں پا سکتے. میں نے عرض کیا یہ جو کچھ ہے اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر اس کے پانے کی تڑپ لگن سوگت پریم کی صورت اختیار کرے, اس کے بغیر ہم رہ نہ سکیں. اگر ایسی صورت بن جاؤ تو وہ پربھو آنے والا. آنسو بہتے ہیں, آپ کہیں گے ہمارے بھی آنسو بہتے ہیں, اور اگر ہمارے آنسو بہتے ہیں دنیا کے سامانوں کے لیے, بچہ بیمار ہو جائے ڈاکٹر کہے اب امید کوئی نہیں, ہائے ہائے کرنا, جو مر جائے تو کیا کہنا, استری مر گئی, پتی مر گیا, سامان نقصان ہو گیا, آگ لگ گئی, بینک فیل ہو گیا, پاکستان بن گیا, لگ ٹوٹ گیا, ہاؤکے نکل گئے, آنسو بے اختیار جاتے ہیں. تو یہ آنسو نہیں, یہ تو ایسو رہے, ایسو اس طرف کے لیے. آنسو تو وہی ہیں جو اس طرف کے لیے ہو. بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے انتر سے پربھو کی یاد میں بے اختیار آنسو بہتے, جس کے لیے آنسو بہیں گے وہ بڑی زبردست لگن ہوگی, تب ہی ہوتا ہے, اسے دل پھوٹتا, دل پھوٹ کر آنکھوں کے رستے پانی کے شکل میں باہر آتا. اگر منہ سے نام بھی کہے جس کے اندر یہ لگن لگی ہو تو آنکھ دے تہر روئے, بے اختیار آنسو ڈب ڈب آ جاتے. وہ نہ بیان کرے یہ آنکھوں میں نمی کہے رہا, یہ بتلاتا ہے یہ پریم انتر سے کھاٹے مار رہا. میں ابھی گیا تھا پونا میں, وہاں سادھو سوامی جی سے ملا, بڑے پیار سے ملے, زارو زار رونے لگے. تو کہنے لگے آپ کو پتا میں کتنا پیار کرتا ہوں تم سے, میری آنکھوں میں دیکھو, بے اختیار ہو رہے. تو جو انتر لگن یا پیار کا ابھار ملتا ہے نا جیون جیون راؤ سے, وہ بے اختیار آنسو نکال دیتا ہے. جہاں ایسے آنسو نکلے, ایسو نہ نکلے, آنسو نکلے, وہ پربھو کے ملانے کا ذریعہ. سمست سمرے صاحب نے کہا یہ آنکھوں کی پلکیں ہیں, یہ زینے ہیں، آنسو کے رستے اس سے بہنے سے یہ سیڑھی بنتی ہے اوپر پرو کے پانی میں. تو کسی مہاپرش کے جیون میں آپ کو یہی طرف ملے گی، جہاں یہ طرف ایسی نہیں بنی وہاں پربھو ابھی کہاں.
جب کبھی نین نیند نہ چاہے، دن پھر نیند نہ پائی، پور چر پیو دیکھے نینی، نیو نیو لاگے پائی.
جب تک پراپتی نہ ہو چین کہاں، پھر شکرانہ کرتا، شکرا بھائی مل تو گیا، پر پہلے اس کا پہلا قدم کیا سوز میرا، نیند اور خواب کا حرام ہونا، طرف اور بیرا اور سوز کا انتر پرگٹ ہونا. یہ پیش نمبر
پھر بھاو پریم سکھائی، پھر بھاو پریم سکھائی، اس بن کڑی نہیں جاگ جیواں، ایسی پیاس تسائی.
کہتے اتنی زبردست لگن بن گئی کہ اب اس کے ملنے کے بغیر ایک گھڑی بھی تڑپ نہیں مل سکتی، پیاس مٹتی. ہر درشن کو میرا من بہو تب سے، جو تکھا ونت بلی، ہری درشن کو پانے کے لیے میرا من بہت تڑپ رہا ہے، جتنا پیاسا پانی کے بغیر، میرے من پریم لگو ہر چیز. تو اس کی لگن کے بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جتنا باہر سے ہٹو گے انتر بے اختیار وہ چیز چھوٹے گی، کشش اٹریکشن ایک آکرشن کھیلتی محسوس کرے گا انسان. اور باہر سے ہٹنے کے لیے جن کے اندر یہ حالت بنی ان کی سب تسنگ آپ کو ہبھار دے شاید کی بات. تو پریم یہ کہاں سے ملتا؟ نہ دکانوں پر بکتا ہے، نہ کھیتیوں میں اگتا ہے، گرنتھوں گوتیوں میں اس کا صرف ذکر ہے. پریم کو کہاں پا سکتے ہیں؟ بھائی جس کے اندر پریم کی جوالا پرجلت ہے اس کی صحبت میں جاؤ، سمجھے؟ اس کی دو آنکھیں جو ہیں یہ اس کی آتما کے اظہار کی جگہ ہیں، بے اختیار اس سے پریم کی راہیں تم کو ملیں گی. کسی پریمی کی آنکھوں میں دیکھو وہاں پریم کی جھلک ملے گی، انفیکشن ہو جاتی، ابھار ملتا، شوق بنتا. تو کہتے ہیں کتنی زبردست میرا شوق جس ہردے میں جاگ اٹھے، قاعدے کی بات ہے، جہاں آگ جلے گی وہاں آکسیجن مدد کو آئے گی. دیر فوڈ فار دی ہنگری اینڈ واٹر فار دی تھرسٹی، ڈیمانڈ اور سپلائی کا نیو وطن ہے. جس ہردے میں پربھو کے پانے کی خواہش ہے اس کو پربھو ضرور ملے گا. آپ اپنے اپنے ہردے میں نظر مار کر دیکھو آپ کیا مانگتے ہو، تمہارا دل کیا مانگ رہا. سوال یہ سارے مہاپرش کہتے ہیں قرآن شریف میں آیا ہے، خدا نے فرمایا ہے کہ بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. گروانی میں بھی آیا ہے پتا کرپال آ گیا ہے کینی بارک مکھ مانگے سے دینا. اور دیال پرش نے یہ اقرار کیا ہے کہ جو بچہ مانگے گا میں دوں گا، پر دیکھنا ہم مانگ رہے ہیں یا نہیں. زبان تو اس کو مانگ رہی ہے، دل دنیا مانگ رہا. کہیں تھوڑی بہت ہم پربھو کی یاد کرتے بھی ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے جو یہی کہتے ہیں ہمارے بچے راضی ہو جائیں، ہماری فلانی مشکل ہے آسان ہو جائے، ہماری روزی کھل جائے، ہماری صحت اچھی رہے. کوئی دیکھا ہزاروں میں ایک آدھ آدمی ایسا نکلے گا جو پربھو کی خاطر پربھو کو یاد کر رہا. تیرا سیوک ایک ادا اور سگلے بہاری کہ ہے پربھو تیرا سیوک کوئی کوئی، ساری دنیا ہی بہار میں لگ رہی. تو ہم زیادہ تر دیکھیں گے اس جسم کے بنتے ہیں, بھکتی بھاؤ ہمارے جسم کے بنانے کے لیے. جیسے روم واز برننگ زیرو فگر, روم میں آگ لگ رہی, لوگوں نے آ کر بادشاہ سے پکار کی, وہ بنسی بجا رہا تھا, خوش ہو رہا تھا دیکھ کر. محمد چار نیلا دہلی میں آئے, آگ لگ رہی ہے شہر میں, لوگ پہنچے بادشاہ سلامت بچاؤ, وہ شراب پی رہے تھے, رکا جو گیا تو کہتے میں نہ بے ہوا شراب کی نظر کرتی. بہت لوگ پیاس سے ملیں گے آپ. اس کے بعد ہمیں ایسے لوگ ملیں گے جو کتم کے بھکت ہیں. کتم کے بھکت کم از کم اتنی سیلف کو ایکسپینڈ کرتی ہے نا, دوسروں کے بچوں کے سکھ کے لیے اپنے سکھ کو آدمی قربان کرتا. لو نو سیکریفائس, یاد رکھو, جس پریم میں قربانی نہیں وہ پریم پریم نہیں. تو بچوں کی خاطر آپ بھوکا سو رہے گا, بچوں کو کھانا کھلائے گا. اس کے بعد ہم سوسائٹی اور سماجوں کے بھکت ہیں, بھکتی کا جذبہ ہے نا, سیلف ایکسپینڈ کرتی. تو سماجوں کے اپنے انسان بھوکے نہ رہے, دوسرے کے وشے گردوں پر چھڑک کرا دو. اس کے بعد ہم ملکوں کے بھکت ہیں, تو ملکوں کے پیٹریٹ, اپنے ملک کا ایک کتا اچھا دوسرے کے ملکوں کے آدمیوں سے, ایک دوسرے سے بہتر ہے بھکتی, جسم کی بھکتی سے پریوار کی بھکتی اچھی ہے, پریوار کی بھکتی سے سماجک بھکتی اچھی ہے, سماجک بھکتی سے ملک کی بھکتی اچھی ہے. مگر ان سب میں دکھ بھرا پڑا, جو جسم کی بھکتی ہے اس کو ایک ایک آدمی اپنے بچانے کی دوسرے کو مار دے گا, جو کٹمب کا ہے اس کے دو چار خون ہو جائیں گے, جو سماج کا ہے لاکھوں پر خون بہ جائے گا لاکھوں کا. پاکستان آپ نے دیکھ ہی لیا نا, سماجوں کے بھکتوں کی مہربانی ہے نا. جو ملکوں کے بھکت ہیں وہ کروڑوں آدمی مر جاتے ہیں گریٹ وارس جب ہوتی. ان سب میں دکھ, پھر ہمیں کس کی بھکتی کرنی چاہیے؟ آتما کا خاصہ ہے یہ بھاؤ سے رہے گی, کسی سے جڑ کر رہے گی. جتنی جتنی سیلف ایکسپینڈ کی اتنے تو اس کا وشال ہردہ بنتا رہا, پریم پھیلتا رہا. مگر اس سب میں دکھ سے بھرے ہیں یہ جتنے بھی ہیں. جب ہمیں اب پربھو کو پربھو سے پریم کرنا چاہیے, تب تو کسی سے بیاش نہ رہی تو وہ سب نہیں ہے. مگر پربھو کو ہم نے دیکھا نہیں, سوال یہ. اب پربھو کو جب تک دیکھا نہیں ہم کس کی بھکتی کریں؟ تو اس کے لیے مہاپرش کہتے ہیں گرو پرسیڈز گاڈ. گرو کس کو کہتے ہیں؟ گرو پرماتما سے پہلا قدم ہے زینا. گرو کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر پربھو پرگٹ, جو موت کی سو گارڈ بنا, اس کے اندر اویدیا نہیں رہی, جیوتی کا وکاس ہے. جس کو بٹھاتے اس کو بھی جیوتی کا وکاس کر سکتا. تو اس لیے وہ اوور فلوئنگ پیالا ہے اس پربھو کے رس اور رنگ اور نشے کا. اس لیے کہا کہ گرو سے پریم کر سگے لو پاؤ سارے پاؤں میں اسے گرو سر مور گرو میرے سر ماتھ پر کہ سب سے سیاح کے میں تیرے چرنوں میں آتا ہوں. وہاں وہ کیا سکھلاتا؟ پرماتما سے پریم کرو, تم بھی جسم نہیں میں بھی جسم نہیں. تو جسم جسمانیت کو چھوڑ, اس میں یہ سمرتھا چھڑانے کی بھی کھینچے سکھ گرو سب بلوان اوپر لا کر تک کی آنکھ بھی کھولتا ہے, اس کا کانٹیکٹ دیتا ہے. آگے ہی یہ پریم کا سروپ ہے, جب اوور فلوئنگ اس سب کی دھارا کے ساتھ لگتا ہے, یہ اور اس رنگ میں رنگا جاتا. اس آلیش کے نعرے تحرک ماں سوائل مطلوب, وہ جلتی آگ ہے جس میں سوائے پریتم کی اور کچھ نہیں رہ سکتا. तो इस गति को पाने के लिए जिन्होंने इस गति को पाया उनकी सोबत और संगत लिखी। ऐसे पुरुषों की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ होती जाती नहीं, गाती है और गाती रहेंगी। मौली रूप साहब ने एक जगह यहां तक बयान किया है, काबा में गजीद बर सरे कुए यक बुते, मैंने देखा कि काबा परिक्रमा कर रहा था एक बुत की गली के उल्टी तरफ जहां वो रहता था। या खुदा ईके बुते या बलाओ आपसे, हे खुदा ये क्या है, बुत है बला है या आफत है कि काबा भी उसके गली के पर परिक्रमा कर रहा। तो अब वही पूछू कि सोबत जिसको सत्संग कहते हैं, ये चीज बेख्तियार बगैर पैसे देने के मिलती, सिर्फ यकसू दिल की जरूरत है, समझे। करो भी कोई सुख करो भी कोई सत्संग आज बनाए, किसी अनभवी पुरुष के पास बैठकर अपने सुख को उस सुतवंत से क्या अर्ज करो। बेख्तियार वो चार्जिंग तुम में भी चार्ज चल जाएगी, अगर एक चार्ज बाजी दूसरी अनचार्ज चले तो वो भी चार्जिंग पकड़ जाती। तो इस तरह से एक सहज ही तरीके से आत्मा प्रभु से जुड़ सकती है, वो हमारी आत्मा के अंतर। आप कहेंगे भाई आखिर आत्मा है मिलकर ही रहेगी, ठीक है, एक फलदार दरख्त है 6-7 साल में फल लाता है, अगर उसको आप साइंटिफिक वे में खुराक दो तो वही दरख्त 2-3 साल में फल ले आता। वो चीजें वो बेजान नहीं, मगर हम लोग आम समझते हैं कि बेजान है दरख्त वगैरह, अगर वो चीजें बाहरी खुराक से मदद लेकर जल्दी फल ला सकती हैं तो एक शुद्ध वर्ग के साथ लगकर जल्दी फल क्यों नहीं ला सकते। तो प्रभु से वो महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी आत्मा प्रभु की अंश है, वो प्रेम है, तुम भी प्रेम के स्वरूप हो, उसके पाने के लिए प्रेम करो। किससे? प्रभु से। प्रभु कहाँ है? प्रभु सब में है, तो सबसे प्रेम करो। मैं मगर में गया, मुझसे उन्होंने कहा हाउ कैन वी वेट डेंजर ऑफ एटमवार, हम कैसे एटमवार के डर से बच सकते हैं। तो मैंने उनको यह अर्ज किया, इस ओनली इफ यू लिव अप टू व्हाट इज स्क्रिप्टेड से, सिर्फ अगर तुम जो तुम्हारी धर्म पुस्तकें चाहते हो उसके पर कारबंद हो जाओ, उस हुक्म को मानो, तो ये डर नहीं रहेगा। धर्म पुस्तकें क्या कहती है कि परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा सब है सबसे प्रेम करो। जब सबसे प्रेम करोगे बेख्तियार आप बताओ किस पर आए तुम चलाओगे। तो प्रेम की कमी से सूल ये दो गोल्डन कमांडमेंट्स हैं जिस पर सारे महापुरुषों की तालीम हिंज कर रही है। तो इस हिंज करने के लिए अगर हर एक महापुरुष की बानी लोगे तो इसी की तालीम वहां हमको मिलती, समझे। तो इस प्रकार मंद होने से हमें क्या मिलेगा, तो परमात्मा से प्रेम करो। जिन्होंने प्रभु को पाया है, जिनकी आत्मा शुद्धवंत होकर महान सुख से मिली है, उसकी मौत किस बन चुकी है, उन सब के लिए आपके दिल में प्रेम होगा। हम लोग इस असूल के कारमंद न होने से पशु वृत्ति में चले जाते हैं, नतीजा क्या होता है, हमारा महात्मा तो ठीक है दूसरे बुरे है, वही बात दूसरा महात्मा भी कहे। लोग इस पर जाते हैं कि हमारा महात्मा क्या कहता है, वही बात दूसरा भी कहे तो कहते नहीं। मैं मगर में गया, वहां उन्होंने मुझे कहा कि क्राइस्ट सबसे ऊंचा, यानी कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि वो सबसे ऊंचा, कहते देखो वो कहता है आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द बिगॉटन सन ऑफ गॉड। हाँ ठीक भाई, मैं जितने भी ये महापुरुष आते देर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट। मैं क्या भाई आपको क्योंकि ये लफ्ज अगर किसी और महात्मा की मानी से भी मिल जाए फिर आप क्या कहोगे। मैंने उन्हें कोट किया, गुरु अर्जुन साहब पिता पूत के रंजीने, पिता पूत रंजी निशान, समझे दो से एक रूप हो गए हो। अब तो सुख सुख तो है निवाजा, मैं तुम्हें लड़का था अब समझ जाओ भाई, वैसे आप क्या कहोगे। मैंने उनको ये कहा कि हम तो उनके दूसरों की धर्म पुस्तकों से वाकफियत नहीं, इसलिए हम समझिए हमारे इसी का बात ही अच्छा भाई। मैंने फिर उनको कहा कि तुम क्राइस्ट की तालीम को नहीं समझ सकते जब तक तुम किसी ईस्टर्न की आंख से न देखो। उस दिन क्या करो इससे बड़ा बबलिंग हुई, हाउ हाउ डू यू से दैट, तुम कैसे कहते हो। मैंने उनको कहा बिकॉज क्राइस्ट वॉज एन ईस्टर्न, क्राइस्ट खुद ईस्टर्न था, इसलिए उसकी टीचिंग ईस्टर्न टीचिंग से बिल्कुल पैरेलल है। जब तक तुमको उससे न मालूम हो क्या हो। तो मेरे याद करने का मतलब यह है कि सब महापुरुष यही कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम करो। अगर तुम परमात्मा से प्रेम करने वाले बन जाओ वो सब मैं सबसे प्रेम करो। एक थोड़ा सूत की चुटकी उसमें डालो, जहां भी डालोगे सुख का कारण बन जाए। ये महापुरुष आए हैं दुनिया में जिनके अंतर वो ताकत इजहार की पोल बने, माउथ पीस ऑफ गॉड बने, उनसे भी तुम्हारा हर एक से प्यार होगा, जात नहीं होगी। जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं बेअख्तियार उनका सब धर्म पुस्तकों से प्रेम होगा, क्योंकि ये धर्म पुस्तकें क्या हैं, ऐसे उस मालिक के रंग में जो रंगे थे उनके दिली व्यवहार के फैन रिकॉर्ड। मैंने देखा अगर आप भाई भी देखोगे बिल्कुल पैरेलल फास्ट मिलते, सिर्फ हमें नावाकफियत के होने के सबब से हम दूसरों की किताबों का हाथ लगाना भी पाप समझते, ये गलत प्रचार। तो प्रभु से प्रेम करने वाले का मैंने अर्ज किया सबसे प्रेम होगा, प्रभु से प्रेम करने का वाले का सब महापुरुषों से प्रेम होगा, प्रभु से प्रेम करने वाले का सब धर्म पुस्तकों से प्रेम होगा, प्रभु से प्रेम करने वाले का जहां बैठकर लोग प्रभु के गुनावाद गाने सब धर्म स्थानों से भी प्रेम होगा। तो एक प्रभु के रंग में रंग जाने से कितना सुख दुनिया में बन सकता है। अगर सब में प्रेम हो जाए न किसी पुलिस की जरूरत है, न किसी गवर्नमेंट की जरूरत रहेगी, न मिलिट्री की जरूरत रहेगी। ये डर क्यों है कि प्रेम में नहीं, अगर प्रेम का इजहार होने लगे सब में तो ये दुख कहां। घर घर में झगड़े किस बात की, प्रेम की कमी की से। जब प्रेम होगा तो सब एक वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली ऑफ गॉड, तो फिर हम किसका दिल दुखाएंगे। जो तो पीलिया मिलन दी सिया न ठाई कही जा, अगर तुम उस प्रभु से मिलना चाहते हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओ। फल खाल की जानकर खलक दुखावे ना, खलक दुखे नंदलाल जी खालक को पिता, खलक को खालक का जानकर किसी के दिल को मत दुखाओ। अगर दुखाओगे तो खालक उसके सुधार देता। तो प्रभु से प्रेम करने वाले दुनिया में सुख और चैन से रह सकते हैं। सारा दुनिया अगर करने लग जाए जहां जहां प्रेम का सलूक वहां सुख का कारण बन जाए। तो महापुरुष जब भी आते हैं वो यही कहते हैं भाई देखो प्रभु से प्रेम करो, प्रभु सब में है सबसे प्रेम करो। किसी महापुरुष के पास जाकर पहला शब्द जो हम सीखते हैं वो क्या है, जब ते साध संगत मोय पाई, न कोई बैरी न ही बिगाना, सगल संग हमरी बनाए। कि जब से हमको साधु की संगत मिली है हमको हमको हमें कोई बिगाना नजर नहीं आता, सब सब आत्मा बेधारी, सब आत्माएं उस प्रभु की अंश हैं, वो सब उस याद हद के कटते हैं छोड़ते हैं, सिर्फ मंदिरों के घाट पर गिरी पड़ी है। जब इससे लिबरेट करके लिए अपने आप में जाग उठेगी सोई सोई जन्मों की रूह हकीकत को पा जाएगी। और ये सोच के जागने का वक्त कब है, ये मनुष्य जीवन ही है जिससे ये जाग सकती। कबीर साहब ने फरमाया जाग प्यारी अब काहे सोआ, रैन गही अब दिन काहे को खोआ। ऐसा कि अब जाग तो अब भी सो रही है, अब दिन चढ़ा है पुलिस जीवन का, इस वक्त जाग सकती है, अपने आप को मन इंद्रियों से आजाद करके प्रभु को पा सकती है। अगर अब भी तू सोई रही तो कब जागी? तो मनुष्य इन बड़े भागों से मिला है, खाए आप किसी समाज में हो भाई, हर एक समाज के सामने ये स्कूल और कॉलेज हैं जिसमें हम दाखिल हुए थे प्रभु की फौज में दाखिल होने के लिए। चाले थे हर मिलिंग को बीजीएफ के चीज गर्व को शामिल होने की, ये थी कि हम प्रभु को पाए। हम उन समाजों के ही पुजारी बन गए, जकड़ों में रह गए। इसलिए गुरु नानक साहब ने फरमाया, छोड़ दो वेश भेद चतुराई दुबदा ए फल लाई दियो, इन जकड़ों में न रहो, रहो स्कूल में और इतने ऊंचे चल जाओ कि मानस की जात सब एक पहचान बने, सबसे तुम्हारा प्यार बने। किसी अन्न ही पुष्प की निशानी यही है। सदगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दियो, जो सबको मिलाकर बैठता है वहां कब समाजों का सवाल नहीं। ये पहली निशानी वो देखता सब आत्मदेदारी है, उसका सबसे प्यार। तो ऐसे पुरुषों की सोच बैठकर जो हमें पहला सबक मिलता है, सबसे प्यार, कोई बेगाना नहीं, कोई तालीम। और दुनिया महापुरुष हैं, सब यही तालीम देते रहे। युवराष्ट्र आए, उन्होंने कहा जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, खुदा की फौज में दाखिल हो जाओ। फिर कहते इसके हमने क्या है, ये रिक्रूटिंग सेंटर हैं जिन समाज हैं, इनमें से हमने प्रभु की फौज में दाखिल होना था, प्रभु भक्त बनना था, प्रभु भक्ति पाने के लिए गुरुभक्त बनना था। हर सच्चा गुरुभक्ति पाइए साजे मन उठाने, और गुरुभक्ति किस बात में है, गुरु की सेवा गुरुभक्त है। जो वो हुक्म दे उसके पर फूल चढ़ाने का नाम सेवा करना भाव भक्ति के साथ। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, ये क्राइस्ट कहता कि अगर तुम उसे प्यार करते हो तो क्या करो, मेरे हुक्म मान। महापुरुष क्या कहता कि भाई तुम नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, एक के पुजारी हो, सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजब मिलत जो ना है काम सबका है। जब हम सब एक ही के पुजारी हैं, उसको राम कहो या रहीम कहो या अल्लाह कहो या गुरु कहो खुदा कहो, तो फिर भाई झगड़ा कहेगा, सब गले मिलकर बैठो। क्यों नहीं हम मिलकर बैठ सकते, क्योंकि हमें अभी तक उसका नशा नहीं आया। चार शराबी किसी समाज किसी मुल्क के हो, वो आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, मगर चार प्रभु भक्त सौ काल प्रभु भक्त नहीं बैठ सकते। कितना अफसोस का मुकाम। महापुरुष जब भी आते हैं इस गलती को निकालते हैं, हम फिर भूल में चले जाते हैं। तो वो जोराष्ट्र से पूछा कि हरा जिसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो कहने लगे राइटियसनेस, पारसाई, सदाचारी में एक पार जीवन। चले पारसाई किसको कहते हैं, राइटियसनेस किसको कहते हैं? महात्मा जब भी आते हैं बड़ा खोल खोल कर समझाते हैं, कहते हैं काइंड थॉट्स, काइंड वर्ड्स एंड काइंड डीड्स, शुभ भावनाएं, प्यार भरी भावनाएं लोगों के लिए। जो भाव उठे प्यार से भरे होते, जहां प्यार से भरे होते तुम तो किस को दोगे, हर एक का दुख बांटोगे, दूसरों को सुख देने के लिए अपने आप की कुर्बानी तक कर जाओगे। लव सर्विस एंड सैक्रीफाइस, ये प्रेम का नतीजा है। तुम सर्विस करने लग जाओगे, लोगों की खिदमत में लग जाओगे, और लोगों की खिदमत के लिए तुम कुर्बानी करने लग जाओगे, ये प्रेम का असल नतीजा। तो इसलिए प्रेम करना था महापुरुषों ने सिखाया है, दैट्स द वे बैक टू गॉड। परमात्मा प्रेम है, आत्मा भी प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम है। अगर हम दुनिया की भाव भक्ति जितने भी पूजा पाठ ये वो हम करते हैं, अगर ये करके हमारे दिल में उस प्रभु के पाने की लगन और शौक नहीं बना, तो ये जिमनास्टिक हैं, सारी उम्र करते रहो तुमको वो चीज नहीं मिलेगी। प्रभु हनोज दिल्ली दूर आ। इसलिए महापुरुष यही कहते हैं कि भाई आप उसमें प्रेम करो। कई जान बूढ़े थे, उनके स्कूल में ले जाया गया और उनको कहा कुछ लेक्चर दो। बूढ़े थे, चल नहीं सकते थे, लकड़ी के सहारे गए, वहां बैठकर लेक्चर देने लगे। फिर उठाया, कहने लगे बॉयज लव वन अनदर, आए बच्चों आपस में प्रेम करो। फिर उठाया, यही कहा बॉयज लव वन अनदर। फिर तीसरी बार फिर उठाया, यही कहकर बॉयज लव वन अनदर खामोश हो गया। लोगों ने पूछा महाराज आपने और कुछ लेक्चर नहीं देना? कहने हाँ महाराज, इससे ज्यादा मेरे पास और कोई लेक्चर नहीं। लव एन ऑल थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू, अगर तुम प्रेम करना सीख जाओ सारी बरकतें तुमको मिलेंगी, इस दुनिया की भी अगली दुनिया की भी। तो प्रेम सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, हम इसको भूल रहे हैं, महात्मा इसको ताजा करते रहे। जो प्रेम करने वाला है, चार छुड़ा भी मैंने अभी अर्थ किया था, गले लगकर बैठ के, क्योंकि उसका नशा आया है, क्योंकि हमें उस प्रभु का भी नशा नहीं आया, इसलिए दिल नहीं बैठ सकते। हर एक इंसान बाहरी सेल्फिश मोटिव, मांग बढ़ाई और क्या कहना चाहिए, अपनी खुद सताई खुद नुमाई में ही फंसा हुआ इंसान गलत प्रचार के सबब से भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे हैं। ये एक बड़ी अफसोसनाक वाक्य, मगर उसका इलाज केवल यही है, जब किसी अनबही पुत्र के पास जाओगे वो तुम्हें यही कहेगा प्रभु से प्रेम करो, प्रभु सब में है सब से प्रेम करो। तो मैं आज के दिन आपके सामने कल शाम और आज शाम तीन चीजें मैंने आपके सामने रखी। एक के बाहर वृत्तियां जो फैल रही हैं उसका खुलासा दो लफ्जों में कर दूं, उस वृत्ति फैलियों को अंतर्मुख करो। बस तुम शुद्ध तो हो, तुम मन नहीं इंद्रिय नहीं जिस्म नहीं, तुम शुद्ध तो हो, आत्मा हो, चेतन स्वरूप हो। इसकी जो बिखरी हुई धारे हैं इनको अंतर्मुख यक्षुई करो। तुम में बड़ी भारी ताकत है, तुम उस सतनाम की गोत वाले हो, तुम में वो ताकत है। पतंजलि जी ने कहा कि योगी एक डायमंड खड़ा कर सकता आत्मा में ये काम, मगर हम हमारी सोचों के फैल रही है इसलिए बड़े निर्बल कमजोर महसूस हो रहे। महापुरुष आचार्य बची तो सुख है, प्रभु की अंश है, गाड है तुम में है, क्यों कमजोर और दुर्बल हो, हटो। और साथ वार देते कैसी सुख अंतर्मुख हो सकती, कैसी बिक्री हुई जो धारे हैं एकत्र हो सकती है। तो अंत में एकत्र होने के लिए वे आप करता ये दूसरी चीज। हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, लगाओ शुद्ध अलग स्थान पर, जाको रटत महेशा, अपनी शुद्ध को उस स्थान पर लगाओ जो इंद्रियों के घाट से लखा नहीं जाता, ऊपर आओ। जाको रटत महेशा, जा महेश की ताड़ी लगाए बैठे, सिर्फ नेत्र यहां बनता है इंद्रियों के घाट के ऊपर। अगर यहां रोज शुद्ध को एकत्र करने लग जाओगे मौत का खौफ नहीं रहेगा। लॉ सैनी में जाती है तो कौन कर इज्जत, आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फटा पानी है वो मौत है, जो रोज मरता है आई डाई डेली। ये महापुरुषों ने कहा लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव, एक्सेप्ट यू बी बॉर्न इन यू यू कैन अटेम्प्टेड टू किंग ऑफ गॉड। बड़े साफ लफ्ज हैं, तो जीते जी पृथ्वी ऊपर आना, इंद्रियों को बाहर से समेटना, दमन करना, शुद्ध थैली को अंतर्मुख यक्षू करना, इसमें सारा राज भरा पड़ा। जब तक आप नहीं, इसीलिए कहा कि नॉलेज ऑफ सेल्फ, सेल्फ नॉलेज रिसीव गॉड नॉलेज। जब तक हमें खुद अपने आप की शिनाख्त नहीं, खुद शिनाखी खुदा शिनाखी, तो इसके इन्वाइट करने के लिए, अंतर्मुख होने के लिए, बिखरी सुतों को युक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? जिसकी सुत यक्षु है वो तुम्हें वे आप करने के लिए पर्सन एक्सपीरियंस देगा हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। और फिर उसकी सोबर संगत से, उसकी चार्जिंग जो मंडल में काम कर रही है वो व्यवहार का कारण बनती है। गुरमुख को तो राजा देना नहीं कहीं एक लक्ष में चार्जिंग है, उस लक्ष में भी एक बड़ी भारी ताकत है, वो जीवंत इंसान को कर देती है। ऐसे पुष्प की सोबत में वो क्या सिखलाते हैं, वही कि परमात्मा प्रेम है, परमात्मा सब में है, सबसे प्यार करो, सब महापुरुषों से प्यार करो। तो ये बोले जो कुछ महापुरुषों के हजूर के चरणों में समझ आई, मैंने थोड़े से डाइजेस्ट के फॉर्म में आपके सामने रखे बड़े सिंपल तरीके से। इसको जितना आप हजम कर लोगे उतने काम बनेगा, मैंने सब चीज के पाने के लिए, इसके पाने के लिए ब्रह्मचर्य का धारण करना होगा। ब्रह्मचर्य की मैंने तारीफ अर्ज की, चलिए कारज को कहते हैं जो ब्रह्म के पहुंचाने तक जरिया बने। वो कैसे होगा, अगर आप चेष्टी को मेंटेन करना चाहते हो तो इंद्रियों को दमन करो, सब इंद्रियों की रोकथाम का हो, अंतर्मुख करना का हो, जगत करना का हो, इनको दमन करना का हो, ये साथ साथ चलेगा तब ब्रह्मचर्य का धारण होगा। ये एक ऐसी जिस मकान की बुनियाद मजबूत हो उसका मकान भी रहेगा, जो रेत की दीवार पर मकान खड़ा है वो कब तक रहेगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसमें सारी बरकतें मिलेंगी। अनबही पुरुषों की सोबत करो, सत्संग करो, सत पद खोजो, उसके पास जाते तो सतपुत के पाने का की खोज करो, और सतगुरु प्रीत समाने, ये तीन चीजें धारण करने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। इसे सब कर लो। और मैं अर्ज करूंगा खासकर खामोश राय चुपचाप कि मैं आपको, आप मेरे ख्याल में हर एक भाई मुझे कुछ न कुछ हर एक कोशिश करता है कि मुझे कुछ दे, भाई मैं भी मांग आज ही मांग लू, अच्छी बात है। वो यही है भाई कि नेक पाक बने, सदाचारी बने, रोज जो किसी अनबही पुरुष की सोबत में समझ आई है उसका अभ्यास करो, सबके अंतर परमात्मा सबसे प्रेम रखो, किसी की ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली किसी का बुरा चित्र न करो, ख्यालात को नेक पाक पुत्र रखो, और अंतर्मुख होने के लिए वक्त दो। मैं जब हजूर के चरणों में गया था उनसे मैंने पूछा महाराज कितना वक्त देना चाहिए, मैं नौकरी में था, करवाने लगे 5-6 घंटे कम अज कम, ज्यादा जितना तुम दे सको भाई आखिर ये काम करना। जो जीते जी पंडित है वो मरकर भी पंडित है, जरूर फरमाया करते थे, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर पंडित नहीं बन जाना। तो भाई ये काम तुमने ही करना है, तुम्हारी जगह किसी भाई पंडित ने नहीं करना। डायरी इसीलिए रखवाई गई कि आप अपने जीवन का ख्याल रखो, वो भाई रखते नहीं। तो दोबारा ये सर संदेश में इश्यू हुआ कि हर एक जगह आदमी जो रहते हैं वो खाली डायरियों को चेक करें कि वो रखते हैं कि नहीं, उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं दी जा रहे। मैं अर्ज करूंगा, अरे भाई अगर तुम ही ना करना चाहो तो कुरान शरीफ क्या कहता है, खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता जिसको ना हो ख्याल अपने बदलने का। भाई मुझे जिन भागों से मिला है इसमें ही तुम ये काम कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो यहां आशा तहां वासा बार बार आना पड़ेगा, पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे आला जन्म गुआ। तो मैं यही अर्ज करूंगा आपका भी काम आसान हो, माफ करना मेरा भी थोड़ा बहुत काम जो है और भी आसान हो जाए, अगर लड़का पढ़ने लग जाए उस्ताद का काम आसान हो जाता है कि वो और शौक से पढ़ाता। तो इसलिए मैं आपसे यही दान मांगता हूं, दोगे सब नहीं, दो तो बड़ा अच्छा ज्ञा है आपकी कि भाई भजन करो, रोटी न खाओ जब तक भजन न करो, एकांत में रहो, किसी का दिल न दुखाओ, सबसे प्रेम करो, जीवन को नेक पाक रखो, और जो रास्ता आपको मिला है उसके करने में वक्त दो, महीने की डायरी दो, मिलकर बतलाओ ताकि पता लगे आप कहाँ हो। अगर आप नहीं करोगे सच पूछते किसका काम बिगड़ता। मैं तो ये हम दर्दी करके कहता हूं ना, काम तो अपने ही बिगाड़ रहे, काम तुम अपना सवारो तो लड़का अपना काम सवारता है, याद करता है साथ में खुशी मुंह से ले जाता। तो मैं आप सब सवाही और बहनों से याद करूंगा, کہ بھائی جیون کو نیک پاس رکھو، یہ جگہ ایک ایسی حضور کی ہدایت کے مطابق بنی ہے جہاں پر کسی سماج کا رنگ نہیں لیا گیا، ایک کامن گراؤنڈ ہے سب کے لیے، سپیچل گیدرنگ ہے، اس میں سب مہاپرشوں کے لیے ہمارے دل میں عزت ہے۔ نرول ایک نام کا اسکول سمجھیا تھی کہ وہ سپیچل لائف، کسی سماج میں بھی جا کر تم اپنے اپنے بولے رکھو، اپنا اپنا جیون اسی میں بسر کرو، جس سماج کی موت تمہارے جسم پر ہے اس میں گزارو، ارے بھائی تمہاری آتما پر اس پربھو کی مور ہے، اس کے حوالے کرو۔ یہاں جب آؤ گھر بار کو بھول جاؤ، اس دائرے میں سوائے پربھو کی یاد اور مہاپرشوں کی یاد کے کسی کی دعائش، کسی کی نندا، کسی کی برائی، خیالات کی اپیکشا بالکل نہ۔ اس مندر میں جس سے عزم ہو جائے گی کہ جو بھی بیٹھے گا اس کی یکسوئی ہوگی۔ اب کئی بھائی کا خواب ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہمارا کچھ بن جاتا، گھر میں نہیں بنتا، اس کا کارن کیا؟ کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں کی ایٹماسفیئر کو خراب کر رکھا، اور باوجود اتنے سمجھانے کے بھی آپ بھائی اور بہنیں جو یہاں آتے ہو پھر بھی وہی بیماری ساتھ لاتے ہو۔ یہاں کے بھی منڈل اگر ایسے ہی رہا تو اور خراب ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بیاہ کرو، یہی مانگ ہے کہ آپ بھائی اپنا کام سوارو، مجھے خوشی ہے، مجھے ہمدردی ہے کہ میرے بھائی سب پاس ہو جائیں، بس باقی رحمت تو حضور نے کرنی ہے یا اس مالک نے۔ تو آج کے دن امید ہے، اگر آپ میں کہوں کہ آپ یہ دان دے سکتے ہیں تو آپ کھڑا کرو گے سب؟ دیکھو کتنے دے سکتے ہیں، آج تو سب نے کھڑے کر دیے ہیں، بڑی اچھی بات۔ نہیں تو آخری چیز، آخری چیز میں آپ کر رہا ہوں، خاموش چپ چاپ، آخری چیز کا وہی سلسلہ رہ جائے گا۔ میں کئی بار کہا کرتا ہوں، یہ بڑا ایک شریفانہ طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا ہے کہ بھائی ڈائری رکھو، اپنے جیون کی پرچار کرو، روٹی نہ کھاؤ، بھجن کرو۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو آخر ٹریننگ کیمپ رہ جائیں گے، ٹریننگ کیمپ میں یہی ہوگا، روٹی وقت پر ملے گی، سمجھے، کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا، تم گھروں سے نکل نہیں سکو گے، کون گھر سے نکل سکتا، وہ ذرا مشکل بن جائے گی۔ اس وقت یہ آخری علاج ہے، اگر آپ مجبور کرو گے تو وہی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں آپ سارے اچھے خود مخلوقات ہو، انسان ہو، میرے دل میں آپ سب کی عزت ہے، چھوٹے اور بڑوں سب کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم سیانے پتھر دو روٹی کھاتے ہو، اس میں تمہارا بھلا، میری خوشی موسم ہے۔ تو آپ اگر ایسا دان ہاتھ اٹھائے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے، دیکھو مالک دیا کرے۔ میری بھی پرارتھنا یہی ہے آج کے دن کہ حضور آپ کو طاقت دے کہ آپ اس پر کار بند رہو۔ بھائی اور کسی نے
ایسے ہیں تقدیروں کا روپ بہ کے پلٹ دیتے ہیں تقدیروں کا،
میرا کافی ایڈجسٹ کر لو،
پلٹ دیتے ہیں تقدیروں کا خوف ان کو، نہ تیغوں کا نہ شمشیروں کا، روپ بہ کے پلٹ دیتے ہیں تقدیروں کا خوف ان کو، نہ تیغوں کا نہ شمشیروں کا، سر ہے سیے افلاک، سر ہے سیے افلاک قدم کانٹوں پر، سر ہے سوئے افلاک قدم کانٹوں پر، اے ساون سن یہ انداز جہانگیروں کا۔ مرادہ فرمائیے ایک نظم، شاید آپ کو پسند آئے۔ سب پشو ادان کے رخ روشن ہے، جس قدر دل کشو ادا اس کے رخ روشن ہے، اور شہر ہے آنکھوں میں یت جادو بھرا چتون ہے، جس قدر دل کشو ادا کس کے رخ روشن میں ہے، کس قدر دل کش ادا کس کے رخ روشن میں ہے، और हजूर शहर है आंखों में यक जादू भरा चितवन है। दिल फिजा शोखी बला की इस बुते पुरफन में है। दिल फिजा शोखी बला की उस बुते पुरफन में है। और क्या कयामत फेज जालिम की अदा चितवन में है। क्या कयामत फेज जालिम की अदा चितवन में है। फितने महशर दी जिसके गोशाए दामन में है। दूसरा शेर मुलाजा फरमाइए। दाग है लाले के दिल में बेखुदी सौतन में है। शौक उल्फत का पड़ा कुमरी की एक दर्दन में है। क्या बहार दिल सिता फैली हुई गुलशन में है। और वो असर मुर्गे चमन के नाला वो सेवन में है। आतिशे गुल हर तरफ फैली हुई गुलशन में है। आतिशे गुल हर तरफ फैली हुई गुलशन में है। हजूर की याद आ गई, हजूर सावन जी की याद आ गई। शेर मुलाजा फरमाइए। इंशाल्लाह अगर खुदा ने मुझे जिंदा रखा तो अप्रैल में फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मरकद आशिक पे हसरत छा रही है इस कदर। मरकद आशिक पे हसरत छा रही है इस कदर। बेकसी अरमानो हिरमा कब्रू पर है नौहदर। और ले गया था कब्रू में जो उनकी उल्फत का शरल। बाद मुर्धन भी दरख्शा है मोहिनी दावे जिगल। जम बाहर जल रही है रोशनी मदफन में है। जम्मा बाहर जल रही है रोशनी मदफन में है। एक और नजर फरमाइए, इसके बाद मुझे